काफिया शाह हुसैन, पृष्ठ 90, 62, राग रामकली। चूहड़ी हां दरबार दी एक रहाओ, ध्यान दी छजली ज्ञान दा झाड़ू, काम क्रोध नित झाड़ दी। 2, काजी जाने सानू हाकम जाने, साथे फारखती वेगार दी। 3, मल जाड़े अर महिता जाने, मैं टहिल करा सरकार दी। 4, कहे हुसैन फकीर निमाणा, तलब तेरे दीदार दी। 5, फारखती अर्थात निकाल देना, वेगार अर्थात बेगार लेना, तहिल अर्थात सेवा, तबल अर्थात जरूरत। व्याख्या, मैं साई के दरबार के सफाई कर्मचारी हूँ, अर्थात मनुष्य बेहद तुच्छ प्राणी है, रहाऊ दरबार में मैं ध्यान की छांगल से पानी छिड़कती हूँ, ज्ञान का झाड़ू लगाकर रोजाना काम क्रोध की झाड़ू पोछ करती हूँ, अर्थात मनुष्य के दरबार में ज्ञान ध्यान की बात सुनता है ताकि अपने काम क्रोध से मुक्ति पा सके। 2, हमें काजी और हाकिम दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हम पर जबरदस्ती से काम थोप कर हमसे बेगार करवाते हैं। काजी और हाकिम की ओर संकेत है जो धार्मिक प्रपंच तथा बाहरी आडंबरों जैसे कई कामों को थोप कर बेगार के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ धार्मिक कर्मकांड और दुनियावी कामों को एक समान फिजूल और व्यर्थ माना गया है। 3, मेरे गांव के पटवारी और सरपंच भी जानते हैं कि मैं अपनी सरकार की सेवा करता हूँ, सरकार से भगवान से है। फकीर लोगों के बारे में सभी जानते हैं कि वह लोग सिर्फ भक्ति भावना से ओतप्रोत होते हैं, उन पर सिवाय परमात्मा के किसी और का हुक्म नहीं चलता। उनके लिए उनकी असल सरकार और मालिक हकीम सिर्फ परमात्मा ही होता है, वह उसी को सर्वोपरि मानकर उसकी भक्ति बंदगी करते हैं। 4, पृष्ठ 91, फकीर को सिर्फ अपने प्रीतम प्रभु को देखने की चाहत और इच्छा होती है, दुनियावी और राष्ट्रीय शासकीय कार्यों से वह बहुत दूर होता है। 5, 63, राग बसंत, चोर करन नित चोरियां, अमली नु अमला दिया घोड़िया, कामी को चिंता काम दी, असा तलब साई दे नाम दी। 1, रहाऊ पाती शाह नु पाती शाहिया, शाहा नु उगराहिया, मेहरा नु पिण गरावा दी। 1, एक बाजी पाइया साइया, एक अचरज खेल बढ़ाइया, सब खेड़ी खेड़ी घर आओ दी। 3, लोग करन लड़ाइया, शर्म रखी तू साइया, सब मरी मरी खाक समाव दी। 4, एक शाह हुसैन फकीर है, रिपीट, सब मरी मरी खाक समावदी। 4, एक शाह हुसैन फकीर है, तुसे ना कोई आँखों पीर है, असा कुड़ी गलना भाव दी। 5, घाड़ियां अर्थात खुशियां, उग्राहियां अर्थात टैक्स, मेहरा अर्थात गांव के चौधरी, शर्म अर्थात लाज, कुड़ी अर्थात झूठी। व्याख्या, इस काफी में शाह हुसैन दुनिया के सभी प्रकार की कारगुजारियां करने वाले लोगों के स्वभाव का विश्लेषण करते हैं, जैसे चोरी करने वालों का ध्यान हमेशा चोरियां करने की ओर लगा रहता है और अमली अपने नशे में खुशी ढूंढते रहते हैं। इसी प्रकार विषय वासनाओं में डूबे कामी का मन सदा काम में व्यस्त रहता है, जबकि हुसैन जैसे फकीरों को सदा प्रभु के नाम और उसके दर्शन की तलब लगा रहती है। अर्थात जो व्यक्ति जिस कार्य में खुशी महसूस करता है वह वही कार्य करना चाहता है। 1, रहा हूँ बादशाह अपनी बादशाहत की परवाह करते हैं और साहूकार जमींदार अपने टैक्स वसूल करने में लगे रहते हैं। गांव के चौधरी या सरपंच आदि अपने गांवों में चौधराहट कायम रखने में मशगूल रहते हैं। दो, इस दुनियावी कामों में उलझे और व्यस्त लोगों को देखकर फकीर को अत्यंत हैरानी होती है। वह इस बात को समझता है कि यह सब किया धरा उस परमात्मा का है जिससे अजीब सा खेल रचकर सारी दुनिया के लोगों को अनेक प्रकार की उलझनों में उलझा दिया है। तीन, पृष्ठ 92, कठपुतली बने लोग खेलते हुए अपने रंग तमाशों में मस्त होकर या अपनी उलझनों परेशानियों के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के तहत लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, लेकिन फकीर जानता है कि यह सभी कुछ उस प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है और यह भी तय है कि सभी ने अंत में चाहे वह लड़े झगड़े या अपने कामों में व्यस्त रहे खाक में ही समा जाना है। चार, दुनिया के इन बखेड़ों में दूर फकीर हुसैन को भी बस इस बात की चिंता है कि वह एक सादा सरल सा फकीर है, लोग उसे पीर का ऊंचा दर्जा न दे, उसे यह झूठी बातें अच्छी नहीं लगती है। दूसरे शब्दों में फकीर होने की असल पहचान यही है कि वह खुद को फकीर ही माने। लोगों को दिशा देने या उसके भाग्य का लेखा जोखा बताने वाला ऊंचा दर्जा हासिल ना करे, क्योंकि असली पीर सिर्फ परमात्मा है। फकीरों को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता। असली प्रशंसा का हकदार परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है, बाकी बातें सब झूठी हैं। 5, 64 राग तिलंग, चंदे हजार आलमू तू केहड़िया कूड़े, चरेंदी आई लेलड़े तुमेंदी उन्न कूड़े। 1, रहाऊ ऊंची घाटी चढ़ दिया तेरे कंडे पैर पूड़े। 1, तै जेहा मैं कोई ना ठिड्डा डिठा अग्गे होए मुड़े। 2, बिना अमला आदमी वेंदे कखु लुड़े। 3, पीर पैगंबर औलिए दरगाह जाए वड़े। 4, सभ्य पाणी हरिया रंगा रंग घड़े। 5, शाह हुसैन फकीर साईदा दरगाह वंज खड़े। 6, चंदी अर्थात चांद जैसी, आलमू अर्थात दुनिया में, मुड़े अर्थात धसे हुए, लुड़े अर्थात लुढ़कते हुए, पाणी हारिया अर्थात पानी भरने वाली। व्याख्या, सभी मनुष्य खुद पर अभिमान करते हैं, जैसे सुंदर स्त्री को अपनी सुंदरता का गुमान होता है परंतु वह यह नहीं जानती कि इस दुनिया में एक से एक सुंदर स्त्रियां देखने को मिलती हैं। सिर्फ उसे इस बात का भुलावा होता है कि वह दुनिया में सबसे सुंदर है। यह गुमान इतना ही झूठा और थोथा होता है जैसे कोई बकरी के लेलों अर्थात मेमनों को चरा कर आए और बात तुम्हें को चराने और उसकी ऊन की करे। तुम्मा अर्थात भेड़ों की एक ऐसी नस्ल होती है जिसकी ऊन अत्यंत नर्म होती है, परंतु पृष्ठ 93, यह नस्ल बहुत कम पाई जाती है और इसकी ऊन अत्यंत महंगी और बेहतरीन किस्म की होती है। अर्थात मनुष्य अपनी आम और साधारण कार गुजारी को दुर्लभ बताने की डिंग हाँकता है। रहाओ 1, तुम्मा बर्फ भरी घाटियों में पाया जाता है। ऊंची ऊंची बातें करने वालों का पोल तभी खुल जाती है जब ऊंची घाटियों पर उन्हें चढ़ना पड़ता है और उनके पैरों में कांटे चुभने लगते हैं। अर्थात खोखली बातें करने से खुद को उत्तम नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि जिस काम को करने की आदत न हो उसे यदि करना पड़े तो रुकावटों से सामना होता है। मनुष्य की बातों से नहीं उसके कामों में ऊंचाई होनी चाहिए। 1, परमात्मा का मार्ग भी इसी प्रकार अत्यंत कठिन और ऊंचा है जिसे सिर्फ बातों और दिखावे से चलकर पार नहीं किया जा सकता। कठिनाइयों और रुकावटों से घबरा कर पीछे मुड़ने वाले मनुष्यों से भी बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। अर्थात कठिन मार्ग पर चलने से बचने के लिए मनुष्य सदा उस ओर से मुंह मोड़ लेना चाहता है और वह दुनिया के राग रंगों में ही असली खुशी ढूंढने लगता है। वह पूरी तरह से इन रंगों में धस और डूब जाना चाहता है। यही देखकर फकीर हुसैन को हैरानी भी होती है। और उसे ऐसे मनुष्यों की अक्ल पर तरस भी आता है। दो, ऐसे भूले हुए मनुष्यों को वह फिर से समझाने का यत्न करता है कि इस दुनिया में जिन्हें कोई बुरी आदत या बुरा काम करने की लत नहीं थी, वह भी इस कठिन मार्ग पर आसानी से चलने पर भी बजाय तिनकों की भांति लुढ़कते नजर आते हैं। अर्थात प्रभु का मार्ग अत्यंत दुरू और दुर्गम से भरा हुआ है और मनुष्य को अंत में उस राह पर चलना ही पड़ता है, मगर वह समय रहते चेतता क्यों नहीं है। तीन, इस मार्ग पर सिर्फ पीर, पैगंबर और औलिये ही आसानी से जा सकते हैं। उनकी संगति से लाभ उठाकर अन्य मनुष्यों को भी दरगाह में जाने को मार्ग ढूंढना चाहिए। चार, प्रभु के दरबार में जाने वालों का तांता लगता हुआ है जैसे अनेक स्त्रियां पानी भरने के लिए आई हों और उन्होंने विभिन्न प्रकार घड़े उठाए हों। अर्थात मकसद सभी का परमात्मा को पाना ही है, यानी पानी ही भरना है। परंतु धर्म और मत विभिन्न प्रकार हैं, रंग अरंग घड़ों से भाव विभिन्न प्रकार के संप्रदायों तथा धर्मों से हैं। बाहरी तौर पर यह घड़े विभिन्न आकार प्रकार और रंगों के हो सकते हैं, मगर उनका उद्देश्य एक ही होता है। पांच, पृष्ठ 94, हुसैन का मत है विभिन्न पीर पैगंबरों में से किसी को भी अपना लो जो मनुष्य के साई की दरगाह में ले जा सके। 6, यह काफी विकास क्रम को अपनाती है। मनुष्य को थोती बातों तथा व्यर्थ के गुमान से जागरूक कर उसे कई उदाहरणों से समझा सिर्फ परमात्मा के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। किसी भी एक धर्म या मत की सर्वश्रेष्ठता पर बल नहीं देती, अपितु सभी धर्मों, पैगंबरों और धार्मिक औलियाओं को एक समान मानकर किसी एक को अपनाने की सीख देती है। 65, राग तिलंग, जहाँ देखो तहाँ कपट है, कहूँ न पायो चैन, दगावाज संसार ते गोशा पकड़ी हुसैन। 1, मन चाहे महबूब को तन चाहे सुख चैन, दोए राजे की सीत में कैसे बड़े हुसैन। 2, कपट अर्थात धोखा, दगाबाज अर्थात धोखेबाज, गोशा अर्थात एकांत या कोना, सीत अर्थात हद। व्याख्या, इस दुनिया में जहाँ देखो वही कपट और धोखा है, जिसके चलते फकीर लोगों को कहीं भी चैन नसीब नहीं होता। इस दगाबाज संसार में यदि हुसैन सुख से जीना और भक्ति साधना करना चाहता है तो ठीक यही है कि वह किसी एकांत स्थान की तलाश कर ले जहाँ कोई भी उसे तंग और परेशान न कर सके। 1, काफी की तीसरी पंक्ति से काफी का रुख एकदम से बदल जाता है। एक ओर तो फकीर इस दुनिया में धोखे, कपट और दगाबाज लोगों से भरे होने की बात करता है और बंदगी के लिए किसी एक एकांत स्थान को खोज कर जाने की बात करता है। परंतु एकांत स्थान पर बंदगी करना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि मन से बेशक कोई भी परमात्मा से जुड़ने और उसे पाने की बात करता है और चाहता भी है, मगर उसके शरीर इतनी आसानी से उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि शरीर को दुनियावी सुखों को भोगने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए मन से प्रीतम की इच्छा रखने के बावजूद अनेक लोग उसकी कठिन तपस्या से घबरा जाते हैं। शरीर को कष्ट देने के ख्याल मात्र से ही उनके रोए खड़े हो जाते हैं और हौसले पस्त हो जाते हैं। शरीर और मन के द्वंद में हुसैन जैसा फकीर भी फंस जाता है। मनुष्य का शरीर और मन उसे अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। दोनों ही अपने आप को पृष्ठ 95 अत्यंत बलशाली मानते हैं। इन दोनों का आपसी समझौता कठिनाई से होता है। इसी परेशानी से त्रस्त हुसैन फरियाद करते हैं कि इन दोनों के झगड़े में फंसने के कारण अनेक मनुष्य फकीर बनने से रह जाते हैं। शरीर और मन को काबू करने वाला ही भक्ति बंदगी कर सकता है, जो इतना सरल नहीं होता। 2.66 राग तिलंग। जागी में जीवन थोड़ा कौन करे जंजाल। 1 कैंदे घोड़े हस्ती मंदिर कैंदा है धन माल। 1 कहाँ गए मुल्ला कहाँ गए काजी कहाँ गए कटक हजार। 2 ए दुनिया दिन दोए प्यारे हरदम नामु समाल। कह हुसैन फकीर साईं दा झूठा सब बोहार। 4 थोड़ा अर्थात थोड़ा या कम, कैंदे अर्थात किसके, कट्टक अर्थात फौजे, बोहार अर्थात व्यापार। व्याख्या, जब मुझे इस बात का पक्का पता है कि यह जीव अत्यंत छोटा सा है, सिर्फ कुछ सालों तक का ही है, फिर मैं इस के जंजालों और झंझटों में क्यों फंसूं? अर्थात मनुष्य जानता है कि उसका जीवन सीमित होता है, बावजूद इसके वह जीवन को सुखमयी बनाने के प्रयत्न करता रहता है, जो वास्तव में जी के जंजाल से ज्यादा कुछ साबित नहीं होते। 1 इस दुनिया में अपनी बड़ी बड़ी हस्तियां बनाने वाले, मंदिर बनाने और धन संपत्ति घोड़े इकट्ठे करने वाले कोई भी जिंदा ना रहे। 1 यहाँ तक कि धार्मिक मार्गदर्शन देने वाले मुल्ला काजी और कई हजार फौजों के शासक भी न बच सके। 2 तू इस बात को याद रख ले कि यह दुनिया 2 दिन की है, भाव बहुत कम समय के लिए मिली है, इस छोटे से जीवन में तू प्रभु के नाम को मत भुला। 3 क्योंकि इस जीवन और दुनिया में सिर्फ प्रभु का नाम ही अटल सत्य है, बाकी सभी कुछ झूठे व्यापार है, व्यापार जैसा है जिसमें मुनाफे के बजाय घाटा ही प्राप्त होता है। 4.67 राग आशा। जाग ना लधिया सुन जिंदु हब्भो विहाड़ी रात। 1 रहाओ इस दमदा वोब की बखासा रहन सराई रात। विछुड़े तन मन बहुण ना मेला ज्यों तखर तुट्टे पात। 2 कह हुसैन फकीर साईं दा होए गई प्रभात। 3 पृष्ठ 96 लंधिया अर्थात मिली, विहाणी अर्थात बीत गई, बखासा अर्थात भरोसा, बहुर अर्थात द्वारा, तखर अर्थात दरख्त, पात अर्थात पत्ते। व्याख्या, ऐ मन तू अपनी नींद से अब जाग जा और ध्यान से सुन, क्योंकि अब रात बीत चुकी है, अर्थात गफलत से जाग कर चेतनाशील हो जा, क्योंकि यहाँ से जाने का समय निकट आता जा रहा है। 1 रहाऊं इस चलती हुई सांस का कोई भरोसा नहीं है, यह सांस कभी भी टूट सकती है, बस एक रात ही सराय में गुजारनी थी, वह गुजार ली है, अब चलने की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। अर्थात यह जीवन एक रात के समान है और यह दुनिया एक सराय के समान, जिसमें आकर यात्री और मुसाफिर कुछ समय के लिए रहते हैं, रात बिताने के बाद यात्री अगले पड़ाव पर जाने की तैयारी कर लेते हैं। यह मनुष्य के जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं होता, अंतिम पड़ाव कब्र ही होता है, बस इस दुनिया से हर समय चलने की तैयारी रखनी चाहिए। इस संसार से एक बार विदा होने पर यहाँ पर दोबारा आने की कोई संभावना नहीं होती। जिस प्रकार पत्ता एक बार वृक्ष से टूट जाए फिर उससे दोबारा जुड़ नहीं पाता, अर्थात इस जीवन में जो भी प्राप्त करना हो कर लेना चाहिए और यह जीवन फिर से प्राप्त नहीं होता। 2. अब सवेरा हो गया है, इसलिए अगले पड़ाव पर जाने की तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। यह अगला पड़ाव मौत के बाद आरंभ होता है, जो कि प्रभु के दरबार की ओर जाता है, जहां जाने के लिए सदा प्रसन्नचित होकर जाना चाहिए।